ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे के पहले दिन कल शाम राजधानी भुवनेश्वर में राज्य भाजपा मुख्यालय में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी कार्यालय में लगभग 2.5 घंटे बिताए, जहां उन्होंने पार्टी और ओडिशा में नवगठित भाजपा सरकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बैठक के बाद श्री मोदी ने पार्टी नेताओं के साथ रात्रि भोज भी किया। श्री मोदी का रविवार दोपहर दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह किया है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और लक्षित हमलों के मामलों को लगातार दृढ़ता से उठाया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इस्कॉन सामाजिक सेवा के मजबूत रिकॉर्ड के साथ विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन है। चिन्मय कृष्ण द्वारा गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारत को उम्मीद है कि ये प्रक्रियाएं न्यायसंगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कल लोकसभा में बताया कि बांग्लादेश में इस वर्ष अगस्त में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया तथा मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों पर हमले हुए। श्री जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका द्वारा भारतीय व्यवसाय पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाने पर सवाल का जवाब देते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि यह निजी कंपनियों और व्यक्तियों और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में स्थापित और कानूनी प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर पहले से सूचित नहीं किया गया था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि भारत अब दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश सभी बहुपक्षीय मंचों पर सिर्फ भागीदारी से प्रमुख हितधारक बन गया है। वे कल नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 में बोल रहे थे। व्याख्यान का विषय था वैश्विक स्थिति पर भारत की बढ़ती भूमिका। उपसभापति ने कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के आदर्शों पर चलते हुए भारत आज दुनिया भर में एक वैश्विक नेता के रूप में जाना जाता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही आकाशवाणी राष्ट्र की आवाज बन गई है। सार्वजनिक प्रसारक के रूप में इसकी भूमिका किसी भी अन्य संचार माध्यम की तुलना में व्यापक है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौर भी मौजूद थी। व्याख्यान की रिकॉर्डिंग 3 दिसंबर को डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर रात 9:30 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी। कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कल कहा कि कपड़ा उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की समर्थ योजना के तहत 3,60,000 महिलाएं लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। चक्रवर्ती तूफान फेंजल के कारण मौसम खराब होने की वजह से दीक्षांत समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय CUTN की यात्रा रद्द कर दी गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मभाषण करेंगे। दिल्ली नगर निगम NCD ने नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। MCD ने GRAP4 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी 12 जोनों में 1,295 अधिकारियों की 372 निगरानी दल तैनात किए हैं। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजवत, PV सिंधु और उन्नति हुडा सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।